हरे कृष्णा, सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है प्रातःकालीन सत्यचरामृत कक्षा में। और जैसा कि आप सब जानते हैं, चैतन्य चरितामृत में भी यहाँ पर मध्य लीला का पांचवा अध्याय, जिसका शीर्षक है साक्षी गोपाल के कार्यकलाप, तो इसका वर्णन हो रहा है। और आज जो है काफी प्यार पड़े जाएंगे, तकरीबन 40 प्यार पड़े जाएंगे, क्योंकि एक ही में छोटा सा डाट पर है। तो इसलिए यद्यपि 45वीं प्यार जो है वो बोर्ड पे है, इसके में थोड़ा सा डाट पर है, 33 से लेकर 75 तक कोई डाट पर है नहीं। तो नीट है वो है, डायलॉग के बारे संवाद है पूरा। जैसे बता रहे, तकरीबन 40 प्यार है, पहले प्यार पढ़ देते हैं, नहीं तो हम पहले सारे प्यार पढ़ देते, फिर उसके बाद आते। छोटो विप्र बाले ठाकुर तुम्हें मोर साखी, तुम्हार साखी बोलाइलुम जदि अन्यथा देखी। है तो बोली दुई जने चलिल देशे रे, गुरु बुधे जो छोट विप्र बहु सेवा करे। দেশে আসি দুই জনে গেল নিজ ঘা, কত দিনে বড় বিপ্র চিন্তিত অন্তর। তীর্থ বিপ্রে পাক দিল কেমন সত্য হয়, স্ত্রী পুত্র জ্ঞাতি বন্ধু জানিবে নিশ্চয়। একদিন নিজ লোক একত্র করিল, তা সবার আগে সব বৃত্তান্ত কহিল। শুনি সব গোষ্ঠী তার কহে আকার, হয়েছে বাদ মুখে তুমি না আনিবে আর। নিচে কন্যা গিলে কুল যাইবে কনাশ, শুনি সকাল লোকে করিবে উপহাস। বিপ্রবালে তীর্থ বাক কেমন করি আন, যে হোক সে হোক আমি দিব কন্যাদান। জাতি জাতি লোক কহে মরা চাড়ি, তোমা বেক চাড়িব স্ত্রী পুত্র করে বিষ খাইয়া মরিব। বিপ্রবালে সাকী বলাইল করিবে না, জিতি কন্যা লইবে মোর ভ্যাত দমরে। পুত্র বলে প্রতিমা সাক্ষী সে গো দূর দেশ, কেমন কে তোমার সাক্ষী দেবে কিন্তু করে কিসে। নাই নাই কহ নাই কইও এই মিথ্যা বচন, তো সবে করিবে মোর কিছু নাই স্মরণ। 44 তো কবে 45 বলি, তুমি যদি কহো আমি কিছুই না জানি, তবে আমি ন্যায় করি ব্রাহ্মণের জিনি। তুমি যদি কহো আমি কিছুই না জানি, তবে আমি ন্যায় করি ব্রাহ্মণের জিনি। তুমি যদি কহো আমি কিছুই না জানি, তবে আমি ন্যায় করি ব্রাহ্মণের জিনি। তো পুরা যে অনুবাদ পড়তে, অনুবাদ এবং তাৎপর্য জগদ্গুরু শিল প্রভাত কে দ্বারা, শিল প্রভাত কি তব তরুণ ব্রাহ্মণ নে বিগ্রহ কো সম্বোধিত করতে হুয়ে কহা, হে প্রভু আপ মেরে সাক্ষী হ্যাঁ, যদি বাদ মে আবশ্যকতা পড়ি তো মে আপকো বুলাউঙ্গা। তো কিসকো বোলা ব্রাহ্মণ নে, কন সাক্ষী হে, ক্যা হুয়া? সাক্ষী গোপাল জি, মতলব গোপাল জি ও সাক্ষী হ্যাঁ। তো উনকো ক্যা বোলা, দেখো বহুত বড়ি বাত বলি, যদি বাদ মে আবশ্যকতা পড়ি তো মে আপকো বুলাউঙ্গা। পহলেই পতা থা কুছ হোনে ওয়ালা। আগে যে ইন বাতো কে বাদ দোনো ব্রাহ্মণ ঘর কে লিয়ে রওনা হুয়ে। पहले की तरह ही तरुण ब्राह्मण उस वृद्ध ब्राह्मण के साथ हो लिया, मानो वृद्ध ब्राह्मण उनके गुरु हों और वह उनकी धरा धरा से सेवा करते रहे। विद्यानगर लौटकर दोनों ब्राह्मण अपने अपने घर चले गए। कुछ काल बाद वृद्ध ब्राह्मण को चिंता हुई, वो सोचने लगे, मैंने तीर्थ स्थान में एक ब्राह्मण को वचन दिया है और मैंने जो वचन दिया है वह अवश्य घटित होगा। अब मुझे अपनी स्त्री पुत्रों अन्य संबंधियों तथा मित्रों को यह बात बता लेनी चाहिए। फलतः उस वृद्ध ब्राह्मण ने एक दिन अपने सारे संबंधियों तथा मित्रों की पंचायत बुलाई और उसने उस सबों के सामने वह सब कह सुनाया जो गोपाल के समक्ष घट चुका था। जब परिवार वालों ने वृद्ध ब्राह्मण का वृत्तांत सुना तो वे निराशा प्रकट करते हुए हाहाकार करने लगे। उन सबों ने यही अनुरोध किया कि अब वह फिर ऐसा प्रस्ताव ना करे। सबों ने एक स्वर में कहा, यदि तुम अपनी कन्या निम्न परिवार में डालते हो तो तुम्हारी श्रेष्ठ जाति रहेगी, जब लोग सुनेंगे तो वे तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, तीर्थयात्रा के समय पवित्र स्थान में दिया गया वचन मैं कैसे मिटा सकता हूं, चाहे जो भी हो मुझे उसे ही कन्यादान करना चाहिए। संबंधियों ने एकजुट होकर कहा, ये देखिए फैमिली प्रेशर की जगह पे है ना, यदि तुम अपनी कन्या उस लड़के को दोगे तो हम सभी तुमसे अपने सारे संबंध तोड़ देंगे। उसकी स्त्री तथा पुत्र ने कहा, उनके स्त्री तथा पुत्रों ने कहा, यदि ऐसा होता है तो हम सभी जहर खाकर मर जाएंगे। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, ऐसा कई बार अक्सर सुनने को मिलता है, अभी कुछ अलग तरीके से, अभी कन्या देने के वक्त नहीं मिलता, पुत्र देते वक्त मिलता है सुनने को ऐसा। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, यदि मैं अपनी कन्या उस तरुण ब्राह्मण को नहीं देता तो वह श्री गोपाल जी को गवाह के रूप में बुलाएगा, तब वह मेरी कन्या को बलपूर्वक ले जाएगा और उस दशा में मेरा धर्म चला जाएगा। पुत्र ने उत्तर दिया, अरे भले ही विग्रह साक्षी हो किंतु वह दूर देश में है, भला वो आपके पास किस तरह गवाही देने आ सकते हैं, आप इसके विषय में इतने चिंतित क्यों हैं? आपको एकदम ये नहीं कहना, बता रहे हैं आपको एकदम ये नहीं कहना कि आपने ऐसी बात नहीं कही थी, ऐसी झूठी बात कहने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल इतना ही कहिए कि मुझे स्मरण नहीं है कि मैंने क्या कहा था। ये तो ये है ना, हमारे यहाँ पे अभी बीच में वैष्णव सदाचार का वर्कशॉप चल रहा था, तो एक दिन गोविंद महाराज आए थे तो वो बता रहे थे कि मॉडर्न पेरेंटिंग मीन्स चिल्ड्रन आर रनिंग द फैमिली। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि बच्चे जो है वही परिवार चला रहे, तो जो है बेटा जो है बाप को ये सलाह दे रहे हैं, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, बस इतना बोल दो मुझे याद नहीं है, बाकी अब बाकी क्या होता है, अब ये वाला प्यार है, इसका अनुवाद है, यदि आप केवल इतना ही कहें मुझे स्मरण नहीं है तो बाकी मैं निपट लूंगा। मैं तर्क द्वारा उस तरुण ब्राह्मण को हरा दूंगा, ठीक है ना। यहां पर शब्द क्या आ रहा है, तबे आमी न्याय करी, न्याय न्याय का मतलब क्या होता है, इंसाफ, पर न्याय का मतलब तर्क भी होता है, तो यानी कि इंसाफ जो है तर्क के आधार पर दिया जाता है, लॉजिकल होना चाहिए, वो तार्किक होना चाहिए, वो समझ के अंदर आना चाहिए कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा, ऐसा हुआ तो ऐसा, न्याय का आधार जो है बेसिकली तर्क या मतलब रीजनिंग होती है, समझ, वो समझ आना चाहिए कि क्या है, और न्याय करी ब्राह्मणों ने जीन, तो फिर उसके बाद जो मैं हरा दूंगा, तात्पर्य तो छोटा सा तात्पर्य। वृद्ध ब्राह्मण का पुत्र नास्तिक था और रघुनाथ स्मृति का अनुयायी था, रघुनाथ स्मृति का मतलब रघुनाथ दास गोस्वामी या रघुनाथ भट्ट गोस्वामी नहीं है, रघुनाथ स्मृति जो एक रघुनाथ नाम से एक बहुत प्रकांड पंडित हुए हैं, स्मार्थ ब्राह्मण बंगाल में 10वीं शताब्दी के आसपास, तो वो उसकी बात कर रहे हैं प्रॉपर। वह रुपए पैसे के मामले में दक्ष थे किंतु थे पहले दर्जे के बेवकूफ, बता रहे फलतः वह विग्रह के आध्यात्मिक पथ पर विश्वास नहीं करते थे, न ही भगवान से उसे कोई श्रद्धा थी, फलतः एक निपट मूर्ति पूजक की तरह वह भगवान के अपने पत्थर या लकड़ी का बना हुआ समझ रहे थे। इस तरह उन्होंने अपने पिता को आश्वस्त किया कि गवाह मात्र पत्थर का विग्रह था जो बोलने में हमारा समर्थ था। इसके अतिरिक्त उसने यह भी विश्वास दिलाया कि विग्रह दूर देश में है, फलतः वह गवाही देने नहीं आ सकता। संक्षेप में वह ये कह रहा था कि चिंता न करो, आपको सीधे झूठ बोलना नहीं है, अपितु कूटनीतिज्ञ की भांति कहना, डिप्लोमेसी कूटनीति है ना, कूटनीति राजनीति डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस है। जैसा कि युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य से कहा था, अश्वत्थामा हता इति गजः, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है महाभारत का। इस सिद्धांत का पालन करते हुए आप केवल इतना ही कहें कि मुझे कुछ भी स्मरण नहीं है और इस तरुण ब्राह्मण ने क्या कहा था इससे अनभिज्ञ हूं। यदि आप इस तरह चलें तो फिर मैं जानता हूं कि किस तरह तर्क करके शब्द आडंबर से उसे हराया जाए। जगलिया वर्ड्स में बात घुमाना बेसिकली, ठीक है। तो इस तरह आप कन्यादान करने से बच सकेंगे और हमारी श्रेष्ठता कायम रह जाएगी, आपको कोई चिंता नहीं करनी है। तो जैसे यहां पर पूरा आगे तक पढ़ते हैं तो तब जाके आपको पूरा स्टोरी इसके आगे का जो है ऊपर पर से डायरेक्ट रिलेशन है। तो आगे पढ़ते हैं आप, इसलिए तकरीबन इतना तकरीबन 40 पेयर कवर कर रहे हैं। ठीक है। अतो शुनि विप्रेर चिंतित, अतो शुनि विप्रेर चिंतित हईल मन, एकांत भावे चिंते विप्र गोपालचार, मोर धम रक्षा पाए ना मरे निज जान, दुई रखा करो गोपाल हीन शरण। श्री राधा दिगर भगवान की, कृष्ण बलराम की, श्री गौरताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। ऐ मत विप्र चिते चिंतित लागिल, आर दिन लघु विप्र तार घरे आइल, आशिया परम भक्त नमस्कार करी विनय करिया कहे कर दुही जोड़ी, तुमि मोर कन्या दिते करियाछ अंगीकार, एबे किछु नहि कह कि तुमार विचार। एत शुनि सेई विप्र रहे मौन धरि, तार पुत्र मारिते आइल हाथे लाठी करी। अरे अधम मोर भग्नि चाह विवाहिते, बामन होया चाँद जन चाहो तो धरिते, ठाइल देखी से विप्र पनाइया गेल, आरो दिन ग्रामेर लोक एकत्र करिल, सब लोकेर बारो पिपड़े डाकिया आनिल, तबे सेई लघु विप्र कहिते लागिल, इहो मोरे कन्या दिते करियाछे अंगीकार, तबे हेन ना देन पुछो एकर व्यवहार। তবে এই বিপ্রের বু ছিল সর্বজান, কন্যা কেন না দেহ যদি জি আছে বচন, বিপ্রকারে শুনো লোক মর নিবেদন, কবে কি বলিয়াছি মো নাহি স্মরণ। এত শুনি তার পুত্র বাক্য ছল পাইয়া, প্রাগল্ভ হইয়া সবে কোনই সম্মুখে আসিয়া, তীর্থযাত্রায় পিতার সঙ্গে ছিল বহু ধন, ধন দেখি এই দুষ্টে লইতে হইল মন, তার আর কেন আর কেহ সঙ্গে নাহি এস গেলে কল, ধতুরা খাওয়াইয়া বাপে করিল পাগল, সব ধন লইয়া কাকে চরে লইল ধান, কন্যা দিতে চাহিয়াছে উঠাইল বচন, তোমার সকল তোমরা সকল লোক কর বিচার, মতৃতা কন্যা দিতে যোগ কি ইহার। এত শুনি লোকের মনে হইল সংশয়, সমবেলন লোভে লোকে ছাড়ো ধর্ম, তারে ছোট বিপ্র কহে শুনো মহাজন, ন্যায় যিনি বারে কহে অসত বচন, এই বিপ্রম ওর সেবায় তুষ্ট হবে হইলা, তোরে তোরে আমি কন্যা দিব আপনে কহিলা, তবে মুই নিষে যেন শুনো দিজবার, তোমার কন্যার যজ্ঞ নাহি মুই হিবার, কাহা তুমি পণ্ডিত ধনে পরম কুলীন, কাহা তুমি গৈরীর মূর্খ নিচ কুলহীন, তুমি তবু এই বিপ্রমরে কহে বারবার, তোরে কলা দিন তুমি কর হশিকার, তবে আমি কহি এল শুন মহামতি, তোমার স্থির প্রতি যাবির হবে না সম্মতি, কন্যা দিতে নারিবে হবে শত বচন, পুনরপি কহে বিপ্র করিয়া যতন, কন্যা দিতে তোরে দিল দিদান করিহ, আত্মকন্যা দিব কেব পারে নিষেধিত, তবে আমি কহি এল দিল করি মন, গোপালের আগে কহ এ সত বচন, তবে ইহ গোপালের আগে তে কহিল, তুমি জানো এই বিপ্রে কম নামে দিল, তবে আমি গোপালের সাক্ষী করিয়া, কহিয়া বাধা পাদে মিনতি করিয়া যদি এই বিক্রমরে নাহি কন্যা দান সাক্ষী বলাই ম তোমায় হইও সাবধান। পঁচাত্তর পুরি কাহানি ক্যা থি আব হুয়া ক্যা এ তো শুন লিয়া আব দেখি ক্যা হুয়া বহুত মজেদার চিজ হ্যাঁ। यह सुनकर वह वृद्ध ब्राह्मण का मन शुद्ध हो उठा। क्या सुनकर? यह सुनकर कि आप जो है गोलमोल कर देना, बस ये मत बोल, झूठ मत बोलना, ये बोल देना मुझे याद नहीं। वो ही सुन के जो है कौन से ब्राह्मण का, जो वृद्ध ब्राह्मण उसी का फलतः अपने को असहाय मानकर उसने अपना ध्यान गोपाल के चरण कपलों पर एकाग्र किया। तो ये तरीका है, फैमिली प्रेशर बहुत ज्यादा है जब उस पर तो भगवान को जो है समर्पित किया उन्होंने। वेद ब्राह्मण ने विनती की, हे गोपाल मैंने आपके चरण कमलों की शरण ली है, अतः मेरी आपस आपसे यही प्रार्थना है कि मेरे धर्म को बचाए और साथ ही मेरे आत्मीय जनों को मरने से बचाए, दोनों चीजें। अगले दिन जब वह ब्राह्मण इस बारे में गंभीरतापूर्वक विचार कर रहा था तभी तरुण ब्राह्मण उसके घर आ गया। सोचे रहा था अगले दिन ही टपक पड़ा वो। तरुण ब्राह्मण ने उसके पास आकर उसे नमस्कार किया, फिर प्रारंभ विनीत भाव से हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, आपने तो मुझे अपनी पुत्री देने का वचन दिया था किंतु अब आप कुछ बोल नहीं बोल रहे, आपने क्या निर्णय लिया? तरुण ब्राह्मण द्वारा ऐसा कहे जाने पर वृद्ध ब्राह्मण मौन रहा। उस इस अवसर का लाभ उठाकर उस वृद्ध ब्राह्मण का पुत्र उस तरुण ब्राह्मण को मारने के लिए लाठी लेकर बाहर निकल आया। पुत्र ने कहा, अरे नीच, तू मेरी बहन के साथ विवाह करना चाहता है जैसे कोई बौना व्यक्ति चांद को प्रकटना चाहता हो। उसके हाथ में लाठी देखकर बेचारा तरुण ब्राह्मण भाग गया। किंतु अगले दिन उसने गांव के सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया। तब गांव के लोग वृद्ध ब्राह्मण को बुलाकर सभा स्थल पर ले आए। तत्पश्चात तरुण ब्राह्मण ने कहना शुरू किया, सुनिए, एन महाशय ने अपनी कन्या मुझे देने का वचन दिया था किंतु अब ये अपना वचन निभा नहीं रहे, कृपया इनसे इनके इस व्यवहार के विषय में पूछे। क्या ना क्या मतलब है कि अपने से जो उम्र में जो वृद्ध है उसका अगर आचरण जो है वो ठीक समझ ना आए और ठीक ना दिखे तो आप सवाल न करें और वृद्ध जनों को बुला के लाए वो सवाल करें, ठीक है? ऐसे ऐसा नहीं कि उन्होंने इकट्ठा कर लिया, ऐसे आजकल इकट्ठा करते हैं शोर मचा के, ठीक है, सुनो सुनो ये हो गया ऐसा हो गया। अच्छा, वहां पर एकत्रित सभी लोगों ने वृद्ध ब्राह्मण से पूछा, यदि पहले से तुम कन्यादान का वचन दे चुके हो तो अपना वादा पूरा क्यों नहीं कर रहे? तुमने वचन दिए थे ना? तो वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, मित्रों मैं जो कुछ कह रहा हूं उसे सुने, मुझे ठीक से स्मरण नहीं है मैंने ऐसा कोई वचन दिया था, बोल दिया किसने, ठीक है। जब वृद्ध ब्राह्मण के पुत्र ने यह सुना बस तो उसने बात बनाने का मौका मिल गया उसे, ठीक है। वह अत्यंत प्रगल्भ, प्रगल्भ का मतलब होता है बदतमीज, प्रागल्भ ये राजरानी में मिलता है एक भाव होता है संचारी प्रागल्भ। सो होकर सभा के सामने खड़ा हुआ और इस प्रकार बोले, हाँ नारानी बत्ती से बोल सकती है कृष्ण से, तीर्थ यात्रा करने के समय करते समय मेरे पिता अपने साथ काफी धन, अब सुनिए क्या क्या बोल रहे, सुनो, तीर्थ यात्रा करते समय मेरे पिता अपने साथ काफी धन ले गए थे, इस धूर्त ने उस धन को लेने की ठान ली, मेरे पिता के साथ इसके अलावा अन्य कोई नहीं था, इस धूर्त ने मेरे पिता को धतूरा खिलाकर पागल बना दिया, ठीक है। इस धूर्त ने मेरे पिता का सारा धन लेकर यह कह दिया कि उसे कोई चोर चुरा ले गया, सुनते रहो क्या स्टोरी बनाए, अब यह कह रहा है कि मेरे पिता ने अपनी कन्या का दान करने को कहा है, कहे तो धतूरा खिला के पागल बना के सारे पैसे हैंठ लिए, अब कह रहा है कि बेटी भी चाहिए, ठीक है। यहां पर एकत्र आप सभी लोग सज्जन हैं, कृपया इस विचार करें क्या इस दरिद्र ब्राह्मण को मेरे पिता की कन्या दान देना उचित होगा, ठीक है। ये सारी बात सुनकर वहां पर एकत्र सारे लोग कुछ कुछ शंकित हो गए, उन्होंने सोचा कि संभव है धन के लोभ में से लोभ से कोई भी अपना धर्म छोड़ दे, है ना। उस समय तरुण ब्राह्मण ने कहा, हे महाशय मेरी सुने, तर्क में जीतने के लिए ही यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। मेरी सेवा से अत्यधिक संतुष्ट होकर इस ब्राह्मण ने स्वेच्छा से मुझसे कहा कि मैं तुम्हें अपनी कन्या देने का वादा करता हूं। उस समय मैंने इससे ये कहते हुए ऐसा करने से मना किया है, ब्राह्मण शेष मैं आपकी पुत्र के योग्य नहीं हूं। कहा आप पंडित धनी और उच्च कुलीन, कहा मैं एक गरीब अशिक्षित और कुलहीन व्यक्ति, बोली थी ये बात। फिर भी ये ब्राह्मण अड़ा रहा। उसने बारंबार मुझसे ये प्रस्ताव स्वीकार करने को कहा। मैंने तुम्हें अपनी कन्या दे दी, तुम इसे स्वीकार करो, बार बार बोलता रहा। तब मैंने कहा, अब मेरी तो सुने, आप विद्वान ब्राह्मण हैं, आपकी पत्नी आपके मित्र तथा संबंधी इस प्रस्ताव से कभी सहमत नहीं होंगे। सारी बात बोली उसने, लड़के ने सारी बात, छोटा था, सारी बात बोली। मान्यवर, आप अपना वचन निभा नहीं पाएंगे, तभी बोला था आपका वचन भंग होगा। फिर भी ये ब्राह्मण अपने वचन पर बारंबार बल देते रहे। मैंने तुम्हें कन्यादान दिया है, संकोच मत करो, वह मेरी पुत्री है और मैं उसे दूंगा, भला कौन मुझे मना कर सकता है, तो सब कुछ बोलते रहे। ठीक है, उस समय मैंने अपने अचित एकाग्र किया और ब्राह्मण से विनती की कि वह गोपाल वगैरह के समक्ष वचन दे। इसलिए लग गया था कि ये जो है आगे वाले के बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है, पर ठीक है, आप भगवान के सामने जो है वचन दे। तब इन महाशय ने गोपाल वगैरह के समक्ष कहा, हे प्रभु, आप साक्षी हैं, मैंने अपनी कन्या इस ब्राह्मण को दान दे दी है, दे दी है। तब मैंने गोपाल विग्रह को अपना साक्षी बनाकर उनके चरण कमलों में इस प्रकार निवेदन किया। जब इन्होंने वचन दिया तब इन्होंने निवेदन किया साक्षी बनाकर दोनों पार्टी से, हे प्रभु, यदि बाद में ये ब्राह्मण अपनी कन्या मुझे देने से हिचकिचाएगा तो मैं आपको साक्षी रूप में बुलाऊंगा, कृपया इसे सावधान होकर सुने। कौन? गोपाल जी। हाँ, सावधान होकर सुने, ये अटेंटिवली। ठीक है, तो ये है पूरी घटना। आप बात समझ आ रही है? ऐसा नहीं था कि बस लड़की दे दी और बाद में मुकर गए, नहीं, इसने मना किया था कि मत करिए, राजी नहीं होंगे आपके घर वाले, और सब कुछ दो तीन बार समझाया। जब नहीं अड़े हुए हैं तो उन्होंने कहा, चलो फिर एक काम करते हैं, भगवान के सामने चल के डील जो है साइन करते हैं, पक्की करते हैं, है ना। पहले था तो ना, इकरारनामा साइन करते थे तो पूरे दस्तखत, तो वो अब इसमें हम जैसे देख सकते हैं तात्पर्य में भी जो है प्रॉपर बता रहे हैं, संक्षिप्त तात्पर्य था जैसे, और किस तरीके से जो है आप झूठ ना बोले और सच भी ना बोले। तो भौतिक समाज में जो है इस चीज को सिखाया जाता है और अक्सर इसको राजनीति समझी जाती है, ये राजनीति नहीं है, इसे कूटनीति कहते हैं। डिफरेंस बिटर, कूट का मतलब बिटर, तो डिप्लोमेसी। तो प्राचीन काल में जो है क्षत्रियों को राजनीति सिखाई जाती थी करने के लिए, और कूटनीति सिखाई जाती थी बचने के लिए। एक ऑफेंसिव, एक डिफेंसिव स्ट्रेटेजी। डिप्लोमेसी करने के लिए नहीं सिखाई जाती थी, डिप्लोमेसी से बचने के लिए सिखाया जाता, डिप्लोमेसी सिखाई जाती और राजनीति पॉलिटिक्स करने के लिए सिखाई जाती। तो ये डिफरेंस, तो लिखा, तो अब इसका किसका सहारा लिया इन्होंने, कहा ठीक है मैं तर्क का सहारा लूंगा। तो इसीलिए जो है तर्क के द्वारा जो है संपूर्ण रूप से भगवान को जो है जाना नहीं जा सकता, नहीं जाता इसी वजह, क्योंकि वो अपने आप में, उसकी अपूर्णता क्या है, उसकी अपूर्णता यही है कि वो दूषित है, सीमित भी है दूषित भी है, दोनों चीजें। इस वजह से जो है इतना, क्योंकि प्रभुपाद एक जगह बताते हैं एक भागवतों के प्रवचन में, एक्चुअली वो बेसिकली विश्वनाथ चतुर्थी बताते हैं माधुर्य का दिन में, कि जो ये कूटनीति का जो दिमाग, इस टाइप से जो कूट दिमाग होता है, ऐसा टेढ़ा दिमाग जो होता है, वो उसकी शुरुआत जो है लालच से शुरू होती है। जब आदमी के अंदर लालच होता है, लोभ होता है, लोभ अनृता जिह्वा हिंसा, ऐसे करके लालच होता है तो फिर अनृता, यानी कि तब उसके अंदर धीरे धीरे क्या होता है, झूठ बोलने की जो है प्रवृत्ति जगती है, क्योंकि उसकी उसका लालच जो है वो पूर्ण नहीं हो सकता सीधे तरीके से, तो फिर जब झूठ बनने की तरीके के बाद जो है ये कूटनीति डिप्लोमेसी जो है आती जिम्मा। फिर आखिरी में उसके बाद वो उसका टारगेट कौन होता है, किससे हम करते हैं, जिससे हमें जलन हो, द्वेष, हिंसा, मतलब उसके प्रति जो है ये, इसलिए उसको हिंसा कहा जाता है उस टाइम। सो तो ये तो ऐसे तो इस तरीके से जो है इसको ग्रेजुअली मतलब आगे बढ़ता है। तो खैर जैसे भी था, आप ब्राह्मण ने, हम ज्यादा इसके अंदर नहीं जाएंगे, हमारा लक्ष्य जो है डिप्लोमेसी सिखाना नहीं है, क्या है बताना है। तो अब जैसे भी, अब लड़के ने जैसे उल्टा सीधा जो है इल्जाम लगाना शुरू कर दिया, और ये सबसे आसान तरीका होता है ना, बहुत ही मतलब जाहिरी, मतलब बहुत ही आसानी से, इवन भक्तों के समाज में भी जो है ये समस्या जो है कई बार भक्तों के अंदर आती है ना। जैसे मान लीजिए बहुत ही आम चीज है, अगर कोई ऐसे बोलता है, ऐसे इनसे बोलते हैं, प्रभु जी आप चोर हो, तो आप जो है आपको बोल दिया कि आप चोर हो, तो आप जिम्मेदारी किसकी आ गई, हमारी आ गई इमीजिएटली ना, कि हम अपनी बेगुनाही साबित करें। तो ये बड़ा, तो इसीलिए जो है बहुत डिफेंसिव में चला जाता है आदमी, अरे मतलब एज इफ। तो इसीलिए अब जैसे इसलिए ब्राह्मण के साथ देखिए, पर उस वक्त जो है किस चीज का जो है आश्रय लेने की जरूरत है, जो इस ब्राह्मण ने किया उसने उस वक्त जो है भगवान का आश्रय लिया सीधा। अगर वो तर्क के जगह तर्क का आश्रय लेता तो बात लंबी खिंच जाती। जब आप पे इल्जाम लगे तो वो टेस्ट होता है कि आप भगवान के, एकदम भगवान की शरण ले इमीडिएटली, कि जो भगवान के सामने हुई थी बात उसने प्रस्तुत कर दी, जो भगवान के हिसाब से तो जो बात सोचती एकदम रख दी। हम तर्क का जवाब तब दे, तर्क जो है आघात करता है हमारे अहंकार पर बेसिकली। आदमी जो है किसी पर इल्जाम इसी कॉन्फिडेंस से लगाता है कि इसके अंदर अहंकार तो होगा ही होगा, बस उसको छेड़ना है, मेरा काम हो गया, है ना, मैं ईमानदार आदमी हूं, मैं शरीफ आदमी हूं, मैं नेक हूं, मैं इंसाफ पसंद हूं। तो ये सारी चीजें क्या है, झूठे अहंकार के तहत आती है। इसलिए सिर्फ इसी को आघात करना होता है, बस खत्म। इमीडिएटली जो है उस आदमी का बैलेंस बिगड़ जाता है, चाहे वो है भी, हो सकता है कोई व्यक्ति नेक हो, ईमानदार हो, इंसाफ पसंद हो, यू नो, ये सारी खूबियां हो उसके अंदर, ठीक है, पर अगर उसको इस बात का घमंड है, गुमान है इस चीज का, तो ये चीजें मरवा देंगी, क्योंकि जब इसी वजह से अटैक होगा वो नहीं संभाल पाएगा। हाँ समझ रहे, तो खटाक जैसे उसमें हिट किया तो आदमी का बैलेंस बिगड़ जाते हैं एकदम, जो है उसको वो, मैं क्या 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 करूं, बचाऊं इसको, अपनी इज्जत बचाऊं, है ना। तो तब जो है वो उसके लिए जो फिर वो एक बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है, और इल्जाम लगाना बहुत आसान है, इल्जाम को सही साबित करना बहुत मुश्किल है ना। तो बात लंबी खींच सकती है इस टाइम से। तो पर इसका सीधा सीधा तरीका क्या होता है, इमीडिएटली भगवान का आश्रय ले जाए। भगवान का आश्रय लेने का क्या मतलब है, कि आपको किसी ने जो सड़क में यहां पर बोल दिया, मान लीजिए कॉरिडोर में, कि प्रभु जी आप झूठे व्यक्ति हो, तो आप क्या करो, क्यों ऐसे मुड़ो और दौड़ के जो भगवान के भाषा के लेट जाओ। भाई आश्रय लेना हुआ, आश्रय लेने का क्या मतलब हुआ, है ना, किसी ने आपको ऑफिस में बोल दिया आपने गबन किया है, हो आप क्यों, आप मुड़े दौड़ के जो आगे भगवान के सामने के लेट, आश्रय लेने का मतलब प्रैक्टिकली क्या है, क्या आश्रय लेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो उसका इल्जाम साबित हो गया, तब तो उसका इल्जाम साबित हो गया। तो इसीलिए उस आश्रय लेने का मतलब क्या है, कि उस वक्त जो है आप भगवान का स्मरण करते, बिल्कुल प्रैक्टिकल, जो मतलब एक बार यहां पर हरिविलास गुरु जी भी आए थे, उन्होंने बताया था, इससे पहले भी प्रॉपर डिसाइपल आए थे, नाम याद दिए, बोथ रिपीट द सेम थिंग, कि ऐसा जैसे ही इंस्टेंस हो, सबसे पहले एक पूरा हरे कृष्ण महामंत्र आप अपने आप को बोले, हरे कृष्ण ना बोले, पूरा हरे कृष्ण महामंत्र अपने आप को बोले। इसका मतलब है आपने भगवान को जो है ये अर्जी दे दी कि भैया ऐसा है, अब मुझे बताओ क्या करना है। अब उसके बाद जो है आप इमीडिएटली आप प्रैक्टिकली क्या करें, ये हमें लाइक
মায়াপুর মে ডিভোটি হ্যাঁ রবার্ট নেই মুকুন্দ মুকুন্দ গোস্বামী হাসকট সাহেব বলে অনুত্তম প্রভু কই লোক জানতে হোক তো ও মতলব উনে ট্রেনিং কোর্স সিখায় থাকে জেসে ইলজাম লগে ইমিডিয়েটলি ইলজাম খারিজ করে হ্যাঁ ইয়া নামে কমিউনিকেশন কমিউনিকেশন লিডারশিপ ট্রেনিং দোনো মে ইমিডিয়েটলি রিফিউট এনি ফলস অ্যাকিউজেশন জেসে কোই ঝুটা ইলজাম লগে ইমিডিয়েটলি অগর ঝুটা ইমিডিয়েটলি বোলতে ঝুটা সফাই বাদ মে দে সচ হ্যাঁ কি ঝুটা ইমিডিয়েটলি না পর ইসে বাদ ইসে বাদ তো ম্যাটেরিয়াল তরিকা জেসে এনে আবসে বাদ ফির ওই জেসে ব্রাহ্মণ আপনি পুরি বাত রাখি এসা হুয়া থা এসা হুয়া থা এসা হুয়া থা এসা হুয়া আর সচ্চাই মে আপনি তাকত হতি হুয়া ভি জেসে উসনে পুরি বাত বতাই যে লোক যে হিল গে সব লোক হ্যাঁ কুছ গড়বড় কি বাত নি শুনি কিসে ও জিতনা মর্জি জোর জোর চলা স্টোরি তো বহু অচ্ছি বনাই থি উসনে কি পয়সা থা এক এক দেখো এক স্টোরি মে মশালা মে কই কমি নি থি স্টোরি মশালে মে স্টোরি কে মশালে মে উসমে দোনো চিজে থি হ্যাঁ না উসমে পয়সা দৌলত ভি থি নশা ভি থা হ্যাঁ না আর লড়কি ভি থি কই কই কসর নি ছোড়ি উসনে স্টোরি তো বহু বড়ি হয় দিল কো ফুল প্রুফ স্টোরি থি আর জেসে জো হ্যায় এক আগে এক পিছে ইনকে জো ভি মা বাপ হ্যায় ইনকো সম্ভাল লে প্লিজ ইমিডিয়েটলি জো হ্যায় শক পড় গেল উতনা পাওয়ারফুল কেস সুনে কে বাবজুদ ভি এজ ইট ইজ স্টেট কর দে চিজে এক কে বাদ এক কে বাদ এক তো ইসকে লিয়ে মতলব আপকো সাবধান ভি হোনা পড়েগা তব আপ নি বোল সকতে জেসে ব্রাহ্মণ নে বোলা মুঝে ভি স্মরণ নি হ্যায় তো আপনি বলছেন মেরে কো স্মরণ নেই এক্স্যাক্টলি হুয়া গিয়া থা পর হুয়া এই থা বস মে হ্যাভ টু টেল দ্য থিংস বাট এস সে ভগবান কো স্মরণ করনে কে ওজহ সে জো হ্যায় উনকে অন্দর জো হ্যায় ও বস উনকে সত্য সচ্চাই মে জো হ্যায় ও শক্তি থি কি ও সামনে ওয়ালে লোক জো কুছ নি জানতে তো মাসুম লোক জিনকে সামনে বাত আই ও উনকি বাত কো উনহোনে মানা পর জো লজিক থা ইসকে অন্দর পুরে ইস পুরে ঘটনাক্রম কে অন্দর জিস ওজহ সে ইয়ে সমস্যা আই তো ও সমস্যা ক্যা থা এক বেসিক গলতি তো থি উস ব্রাহ্মণ কি বৃহৎ ব্রাহ্মণ কি ব্রাহ্মণ ক্যা গলতি থি কোই বতানা চাহেগা হ্যাঁ ইয়ে গলতি থি জড় মে গড়বড়ি থি জব উসনে বচন দিয়া থা এ বালা তো ভাই জজ্বাত মে বহকে বচন দে রিয়া একদম সে হ্যাঁ উসনে বোলা ভি কি আপ পুছ লিজিয়ে লজিক্যাল অগর ও চাহতে তো বাদ মে ভি দে সকতে থে ও বাদ মে জেসে ইয়হাঁ পে বতায়া না দোনো সেম গাঁও কে থে ও বিদ্যানগর রহতা থা ও বিদ্যানগর রহতা থা ও ইতনা অগর আর বাপস ভি উসকে সাথ হি আয়ে ও উসকি সেবা করতে ভাই আয়ে তো বাদ মে ঘরওয়ালে সে সলাহ করকে দে সকতে তো ইয়ে এক বহুত ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর হ্যায় মতলব জিস জিস ওজহ সে জো হ্যায় মতলব আলটিমেটলি ইয়ে জো জিস জো টেন্ডেন্সি হম দেখতে হ্যায় ইসি ওজহ সে দেখা যেতে এক ফ্যাক্টর ইয়ে ভি রহে বৈদিক জো ম্যারেজ কা সিস্টেম জো হ্যায় জো টুটা অভি পহলে ইয়ে সিস্টেম হতা থা কি ঠিক হ্যায় মা বাপ নে জবান দে দি পর মা বাপ জবান দেনে ওয়ালে নেই হোতে পুরা কা পুরা পরিবার জিম্মেদার হোতা হ্যায় ইসকে লিয়ে পহলে জো হ্যায় ইয়ে হতা থা সব লোক মিল কে জো হ্যায় বচ্চে কা ফয়সলা করতে এসা হ্যায় বচ্চে সে নি পুছতে ইয়ে বাত ভি হ্যায় কিউ নি পুছতে বচ্চে সে বচ্চা বস জেসে ইয়ে বচ্চা ভি আয়া থা ইসকো স্কুল পে ডালনে সে বরস কে মা বাপ নে পুছা বেটা তু স্কুল জায়েগা কোন সে স্কুল মে জায়েগা নাম বতা কহিং ভক্তি বিনোদ প্রভু নে বহুত আচ্ছা বতায়া থা তো ক্যা পুছনা চাহিয়ে আর ক্যা নহীঁ পুছনা চাহিয়ে তো বচ্চে কি ভালাই কে বারে মে জো হ্যায় বচ্চে সে নি পুছা জাতা তো উসকো মতলব ও নি আপ বচ্চে তো ওয়া নি পুছা জাতা থা কিউ নি পুছা জাতা থা কিউকি বাকি জো লোক হ্যায় ও উস বচ্চে কা ভালা চাহতে বাদ মে জো ক্যু পর ক্যু পর ইসকা ওই সেম চিজ কিসি ভি চিজ কা দুরুপয়োগ করেঙ্গে তো চিজ নষ্ট হো জায়েগি তো জব মা বাপ কে অন্দর অগর ইয়ে দেখনে কি শক্তি খতম হো যায় কি বচ্চা কা ভালা কিসকে অন্দর হ্যায় ভালা দেখনা কেসে जो कि बेसिकली गुरु साधु और शास्त्र के आधार पर देखा जाता है, समय काल परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए, तब जो है मां बाप से या किसी भी व्यक्ति से वो अधिकार छिन जाता है। ठीक है, जैसे इस वजह से ये समस्या आई यहां पर, और उस समस्या का निदान करने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ा। अब आगे जैसे जब होगा बट क्योंकि क्या था, दोनों के दोनों जो है शुद्ध भक्त थे, दोनों ब्राह्मण। जैसे शुरुआत में विजय प्रभुपाद ने उस तात्पर्य में बताया 33वें श्लोक कि अगर इस दो शुद्ध भक्तों के बीच ही कहानी नहीं होती तो ना नित्यानंद प्रभु सुना रहे होते ना महाप्रभु सुन रहे होते वहां पर। हाँ, बड़े चाव से पूरा चैप्टर है ये। तो ये महत्वपूर्ण चीज है। गिरिराज महाराज जी अपने एक प्रवचन में बताए थे कि प्रभुपाद के बारे में कि कैसा मतलब ये संबंध होता है जैसे पति पत्नी का, और वो कब बनता है बीच में, वही सेम चीज पहले भी बाद में भी। प्रभुपाद को बताया बताया थे गिरिराज महाराज कि एक प्रभुपाद के डिसाइपल थे, तो वो प्रभुपाद से पूछा, माता जी इतना ही नहीं शादी हुई, तो प्रभुपाद से पूछा कि भाई शादी तो हो गई अब करना क्या है, उनको कैसे देखे इनको मतलब जो हस्बैंड ने, तो उन्होंने बोला कि जैसे प्रभुपाद ने बोला जैसे एक बायां हाथ होता है और दायां हाथ होता है, बायां हाथ और दायां हाथ एक दूसरे से मिलता है क्योंकि बीच में शरीर है, शरीर हटा दो तो कटे हुए हाथ है फिर, तो शरीर क्यों नहीं, तो इसीलिए उसी तरीके से मियां बीवी मिलते हैं क्योंकि बीच में कृष्ण है, नहीं तो कटे हुए हाथ है तो उस तरीके से। तो क्योंकि आधुनिक समाज में जैसे भक्ति सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जब आप भक्ति में आएंगे तो भक्ति में आने का मतलब क्या है, अंग्रेजी में उसकी स्टेटमेंट है यू विल बी रिलीव्ड ऑफ द बर्डन ऑफ एंजॉयमेंट, व्हेन यू कम टू कृष्ण कॉन्शियसनेस यू विल बी रिलीव्ड फ्रॉम द बर्डन ऑफ एंजॉयमेंट, यानी कि आनंद उपभोग करने के भार से आप जो है मुक्त हो जाएंगे। हैं आनंद उपभोग करने का भार क्या होता है, क्योंकि अब आनंद उपभोग का भार जो है कंपटीशन से आता है, हु विल एंजॉय मोर, है ना, स्ट्रांग कंपटीशन है ना। कैसे एक रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे बाहर जाती मतलब आम मतलब जैसे ज्यादातर पाला मेरा लड़कों से बढ़ता है तो उस हिसाब से बता सकता हूं, अब लड़के बाहर जाते हैं तो दूसरे उनसे पूछते हैं तूने वो वाली मूवी देखी, तूने वो तू उस वाले मॉल में गया, तूने वो डिश खाई, तू वहां पे गया, तूने फ्लाई किया, तूने वो मोबाइल का सेट खरीदा, तूने वो करा, तो बेसिकली क्या हो रहा है, सेंस ऑफ कंपटीशन है। और अगर तूने वो नहीं देखा, वो नहीं देखा, अबे यार डिप्रेशन हो गया उसका, ऐसे कोई कुछ भी नहीं किया पूरा ही डिप्रेशन में चला जाएगा वो, अरे तू ये तो मेरी जिंदगी बर्बाद है तेरी, है ना, तो ऐसे तो स्ट्रांग सेंस ऑफ कंपटीशन से बेस्ड है, तो इसीलिए वो जो अब तूने वो मूवी देखी इसका मतलब वो एक खुशी का जरिया होना चाहिए, तूने वो चीज खाई है ना, और अल्टीमेट इन सबका जो इन सबका पिताजी जो होता है ये सारी चीजें एक तरफ उसका पिताजी, आखिरी जो रामबाण मारना होता है भाई तेरी कोई गर्लफ्रेंड है खत्म खत्म बंदा। तो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली यही पूछ रहे कि आपका आनंद का कोई जरिया है, पूछा ही तो है क्या कर दिया सर, कोई जेब से पैसे निकाल लिए क्या कर दिया आपके साथ, बताओ ये सवाल ही तो पूछा है, तूने वो चीज देखी है, तू उस मॉल में गया है, तूने वो चीज खाई है, कैसे नश्तर की तरह चुपती अंदर जाके बात मैंने नहीं किया ओ, है ना। तो बेसिकली वो जो सवाल है, वो जो आनंद जिसके ऊपर पूछे जो आपने लिया कि नहीं, वो आपके लिए बोझा बन जाता, तो वो आनंद का बोझा लेके आदमी घूम रहे कि मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं देखा, मैंने वो नहीं करा, मेरा वहां पर अकाउंट नहीं है, मेरा वहां पर वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, है ना। तो इसीलिए भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर ने हमारा पूरा सिस्टम है, इस बोझे को बाहर ही उतार दो, चक्कर ही खत्म कर दो। तो ये चीजें अब अगर ये जिसके अंदर ये इस टाइप का बोझा है वो कभी ना खुद सुखी रह सकते ना किसी को सुख दे सकते। तो जब इस ब्राह्मण ने उस ब्राह्मण को देखा था छोटे में, तो उसके पास ये बोझा नहीं था, क्यों नहीं था देख सकते उस ब्राह्मण کچھ بہت تھوڑا سا تھا پیچھے, مطلب شلوک پہ نہیں جاؤں گا, ویسے بتا دیتا ہوں. یہ 22 شلوک کے بعد کے شلوک ہیں, اس میں بالکل اس براہمن کے اندر جو چیزیں دیکھی اس براہمن نے, سب سے بڑی بات تو آف کورس جو اہم جو سینٹرل چیز تھی وہ تو تھا ہی کہ اس کا بھگوان کے پرتی شردھا کتنی تھی, وہ تو بالکل کلیئر تھا, وہ تو ہر چیز سے دیکھی جا سکتی. وہ براہمن جو ہے وہ رید براہمن تھا, ترون براہمن تھا, اس کے بیٹے ہی عمر کا تھا, ہے نا. پر وہ بیٹے ہی عمر کا براہمن بھی جو ہے وہ کدھر تھا, اس کے ساتھ تیرتھ یاترا پہ تھا. تو بھگوان کو وشواس ہے تبھی تو تھا وہاں پر, بڑے جوان میں تیرتھ یاترا کیوں کرنے گیا تھا, گھر پہ بیٹھ کے کمائیاں کرتا نا, کھیتیاں کھیت مال جوتا ہو. پر کیا دیکھا اس کے اندر, یہ بات سچ تھا کہ اس کے براہمن کے پاس جو پیسہ تھا براہمن کے پاس, پر یہ براہمن لالچی نہیں تھا, سی واز بیلنسڈ. یہ پہلا گن دیکھا اس نے, لالچی نہیں ہے لڑکا, کچھ نہیں مانگا اس نے سیوا کرنے کے وقت سے. اور تھرو آؤٹ, یہ تو آخری شلوک, اس سے پچھلا شلوک تھا, وہ کیسا تھا کہ جیسے کہ گرو کی سیوا کر رہا ہوں ویسے سیوا کرتا ہوا آیا اس براہمن کی. اس کا مطلب کیا تھا, سروس ایٹیٹیوڈ تھا, اور اس کے اندر جو ہے سامنے والے کے لیے جو ہے یعنی کہ بڑے بوڑھوں کے لیے عزت تھی, عزت تھی اس کے دل میں, تبھی کری اس نے سیوا. اور اس براہمن نے جب اس کو پورا بولا کہ نہیں نہیں جی میں بہت خوش ہو گیا جی, آپ نے میرے لیے بہت کر دیا جی, آپ جو ہے میں اپنی کنیا کا دان دیتا ہوں آپ کو, چپ چاپ سنا اس نے پہلے, اس کے بعد سوچ سمجھ کے جواب بھی دیا اس کو. دس از اے ویری گڈ لسنر آلسو, مطلب شارپ بھی تھا, غریب ہو سکتا ہے, لالچی نہیں تھا, بیوقوف بھی نہیں تھا. اور یہی جو آرگومنٹ جو بالکل بہت امیڈیٹلی گڈ فگر آؤٹ, دیکھیے آپ وچن دے رہے ہیں گھر میں سمسیا آ سکتی ہے. اور یہ بھی بتایا, اپنی حیثیت بھی بتائی, دیکھیے میں ایسا نہیں ہوں, آپ بہت اونچے خاندان کے ہیں, میں نیچے خاندان کا ہوں, آپ پڑھے لکھے ہیں, میں ان پڑھ ہوں, آپ پیسے والے ہیں, ہم غریب ہیں. سو ہی واز ویری ایٹ دا سیم ٹائم, اور ظاہر بات ہے بہت ونمر تھا, بہت ونمر تھا. آیا اور ونمر کیوں تھا, ونمر اس لیے تھا کیونکہ اس نے اپنی جو حیثیت تھی وہ اس کے سامنے مانی, یہ سب سے بڑا ثبوت تھا اس کے ونمرتا کا. ونمرتا کا مطلب یہ نہیں کہ میں کیا بننا چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے, ونمرتا کا مطلب ہے پہلے میں مانوں میں ہوں کیا. ابھی تو مانی اس نے بات, اور یہ بات ایسی نہیں اس براہمن کے سامنے الگ سے مانی, یہی بات اس نے سب کے سامنے بولی. دوبارہ میں نے اس کو یہ بات بولی تھی کہ بھیا میں غریب ہوں, ان پڑھ ہوں, اور مطلب اتنا آپ لوگوں کے برابر کا رتبہ نہیں ہے ہمارا, معنی رکھتا ہے. اس کا مطلب براہمن کا دکھاوا نہیں تھا, دکھاوا کس لیے کرتا ہے آدمی, اس لیے تو کرتا ہے کہ جو میں ہوں وہ دکھوں نہ, ویسا کرایہ کا مکان ہو پر گاڑی نیچے ضرور ہو, ہوتا ہے نا زیادہ تر, ہے نا, لون میں گاڑی لے رکھی ہے, کرایہ کا مکان لے رکھا ہے, برانڈیڈ کپڑے ہونے چاہیے, پورا زندگی دکھاوے پہ آدھاری. تو وہ آدمی کیا ہے نا, ونمر ہے, وہ دکھاوے والے زندگی جینے والا آدمی کیا ونمرتا ہو گئی, بڑی بڑی باتیں ونمرتا کیا کرنی, پہلے دکھاوا چھوڑو اپنا. تو یہ ونمرتا کا لکشن ہوتا, تو یہ نہیں تھا اس کے اندر. اچھا, کوئی آبویسلی کوئی بری عادتیں نہیں تھی اس کو, دھتورا کے بارے میں بول ضرور دیا اس کے لیے, پر ایسا کچھ تھا نہیں ہے نا, وہ دکھا نہیں ہے ایسا, ہے نا. اور براہمن نے کیا دیکھا اس کو, دیکھ سارے براہمنیکل اس کے اندر, سارے براہمن کے گن دکھے, یہی تو گن ہوتے براہمن کے. تو اس کا مطلب کیا, سمان جاتی کیا, اس لیے اس لڑکے ورد براہمن نے بولا ٹھیک ہے. مطلب ایک بار بھی یہ نہیں آیا, یہ دیکھا کہ جو چیزیں وہ بول رہا تھا کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے, نہیں دیکھا اس نے, میرے پاس کوالیفکیشن نہیں ہے, نہیں دیکھا اس نے, بول رہا اپنے منہ سے. ہم تو تفتیش کرتے ہیں پراپر, پوری سی آئی ڈی لگتی ہے, جتنے پیسے بول رہے ہیں کماتا کہ نہیں کماتا, ہے نا, جس آفس میں کہہ رہا ہے وہاں جاتا کہ نہیں جاتا, ہے نا, جو جتنی تعلیم اس نے حاصل کی ہے وہ ڈگری اس کے پاس ہے کہ نہیں ہے, ایک بھی چیز نہیں. وہ اپنے منہ سے بول رہا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, یہی کر رہا, کیونکہ یہ ساری کوالٹیز دیکھیے, کیونکہ یہ ساری کوالٹیز ہیں تو وہ جو ہے آنند کے بوجھ کی طرح دبا نہیں رہے گا. جو آدمی خود ہی آنند کے بوجھ کی طرح دبا, دوسروں کے آنند دے گا, وہ ایسا آدمی جو ہے سچ میں جو ہے دوسرے کو آنند دے سکتے, کیونکہ اس کو اس کا سینٹرل جو اس کا جو سب سے بڑا جو اس کی دھروہر تھی بھگوان پر اٹوٹ وشواس, جبھی تو آیا تھا وہ سارے تیرتھوں کے بھرمن کرنے, اور جبھی تو ایسی بات کرنے کے بعد اس نے بولا کہ ہاں نہیں بھگوان کے سامنے ساکشی, پھر تب جا کے آپ یہ کوالٹیز برہمن کی جو دیکھنے میں ملتی ہیں یہاں پہ. ایسے کیونکہ نہیں تو کیا جیسے شاستر سے ہے نا پرہلاد مہاراج بولتے ہیں بھگوت بھکتی ہی دس سے جاتا شوتا جپا تپا اپارس دے منڈنم لوک رنجنم, تو وہی اگر یہ نہیں ہے بھگوت بھکتی ہینس سے جس کے اندر بھگوت بھکتی نہیں ہے جاتا شوتا اس کی جات ہو کوئی کیسی بھی اس کا پڑھائی لکھائی کیسی بھی ہو شوتا جپا تپا اور کتنی بھی تپسوی آدمی تپسوی مطلب محنتی یہاں پر جو مرضی ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے اپرانس سے دیہ سے منڈنم لوک رنجنم, یعنی کہ ایک مردہ لاش جس کو جو ہے سارے لوگوں کو دکھانے کے لیے جو ہے سجایا جاتا لاش کے برابر, اس کے اوپر کا سارا دکھاوا جو ہے جیسے لاش کے اوپر جو ہے جیسے مالا ڈالی جاتی ہے تو ویسے تو بالکل اسی طریقے سے خاص کر اس کے اندر یہ بیسک کوالٹی نہیں. تو جب ہم جس کے اندر جو ہے بھگوت بھکتی انس سے جب ہم ایسے لوگوں کے پاس جو ہے اپنی لڑکی یا اپنا لڑکا دیتے ہیں بھکتی بھگوت بھکتی ہینس سے ہیں تو بیسیکلی جان لیجئے آپ کی بیٹی کبھی ودھوا ہوگی نہیں کیونکہ اس کی شادی لاشی ہوئی ہے برامد پانی ہے. آپ کا لڑکا بھی جو ہے ورڈ جو ہندی میں بولتا وہی یوز کروں گا رنڈوانی بنے گا کیونکہ اس کی شادی جو ہے لاش سے ہوئی ہے اپرانس سے لاشوں کی ایکچولی دو لاشوں کی شادی ہوئی ہے اگر باہر ہے ہم تو بھکتوں کے سماج کے حساب سے کہہ رہے ہیں. آپ کی شادی جو ہے وہ لاش سے ہوئی کروا رہے ہیں آپ دہیج بھی دے رہے ہیں اس کا خرچہ بھی کر رہے ہوں گے 20-25 لاکھ بڑے شان و شوکت کے ساتھ. اچھا لگے چاہے برا لگے سننا کتنا برا لگ رہا ہے نا کرتے برا نہیں لگتا ہے کرتے نہیں لگتا برا کسی کو سنتے ہی جو ہے ایسے لگتا ہے جیسے سانپ لوٹ رہا ہو چھاتی پہ کرتے نہیں برا لگتا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کتنی مہنگی لاش ملے گی کس میں جو ہے کتنے ہار چڑھے ہوئے یہ ایسے ویکتی کے لیے بھگوان آئے نا چل کے ایسے ویکتی کے لیے بھگوان چل کے آئے کس کے لیے چل کے آئے اس کو دیکھیں کس لیے چل کے آئے ہمارے لیے کیوں نہیں چل کے آتے ہمارے تو چل کے آنے کی اتنا تو ٹائم ہی نہیں دیتے اس سے پہلے آ جاتے ہیں میرے تو بھگوان سپنے میں آئے یہ بول دیا وہ بول دیا فلان ڈمکان پتا نہیں کیا کیا کر دیا پہلے تو پہلے ہی ہو گیا تو بنا تھا کیونکہ یہ بڑا اچھا ہے کیونکہ ہم کئی بار جاتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں بات کرنے سے پہلے ہی مطلب اسکوپ ہی ختم ہے ہمارے تو جی بھگوان سپنے میں آتے ہیں وہ ہمیں سب بتا جاتے ہیں کیا کھانا ہے کیا پہننا ہے کہاں جانا ہے نہیں جانا یہ وہ سب ہو گیا ختم ہو گیا کھیل آپ کو گرو شادو شاستر کی ضرورت ہی نہیں ہے پہلے ہی ختم ہو گیا تو اسی لیے ہے نا تو ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے بھگوان نہیں آتے پھر بھگوان اپنا پرتینیدھی بھیجتے ہیں ایک ہوتے یمراج اور ایک ہوتے مایا دیوی ساری زندگی جو ہے مایا نچاتی ہے انت میں یم درشن ہوتا ہے اس کا اور کچھ نہیں ہوتا جو ہے سو ہے نہیں سچائی کڑوی لگے چاہے جو مرضی لگے کڑوی اسی کو لگتی ہے جو یو نو جس کے جی میں چھالے پڑے ہوں تو سچائی میٹھا ہی ہوتا ہے سچائی کبھی کڑوا نہیں ہوتی یہ سٹیٹمنٹ بھی جو ہے جس نے بولی ہے سچائی کڑوی لگتی ہے مہا مور کھڑا ہوگا سچائی کڑوی ہوتی ہے سچائی کا مطلب ستیہ میو جیتے سچائی ستیہ بھگوان کا ایک نام ہے تو بھگوان کڑوے لگ رہے ہیں جس کو تو مہا مور کا آدمی ہوگا جیسے یہاں پر بولا نپٹ مور بندہ نپٹ مور تھا ایکچولی اس کا لڑکا جو تھا اسی لیے جو ہے یہ بھوتک باہر کے لوگ کی جو لوکک وچار دھارا ہے اس سے ہم نہیں سہمت ہو سکتے تو اسی لیے بھکتی وکاس مہاراج بھی کہتے ہیں کہ آپ کو شروعات میں جو ہے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ جو زندگی جو یہ بہت جو لوکک وچار دھارا ہے اور ہماری یہ جو کرشن بھاونا بھاوی زندگی ہے یہ الگ ہے اور ہم الگ ہیں, ہمیں ہی ماننا پڑے گا اس معاملے میں ہم الگ ہیں. ہاں ہے اگر کہتا ہے کوئی کہ آپ کا ٹرو ہاں ہے تو اگر کہتے ہو کہ آپ کی وچار دھارا روڑی وادیا ہو, روڑی وادی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کنزرویٹو شبد کہاں سے آتا ہے؟ کنزرویشن سے آتا ہے. تو ٹھیک ہے ہم کنزرو کر رہے ہیں اپنے ویلیوز کو, آپ تو لٹاتے پھر رہے ہو ہر جگہ, ہم سنجوتے پھر رہے ہیں, بہت اچھا ہے, بہت بڑی اپادھی ہے. اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آپ کنزرویٹو ہو تو بولے ہاں بہت بڑا خطاب سے نوازا ہے آپ نے ہم کو, کیونکہ ہاں ہم جو ہے سنجو رہے, کنزرویٹو مطلب سنجونا, ہم سنجو رہے ہیں اپنے ویلیوز کو. ٹھیک, ہمارے لیے جو ہے ہمارے اصول ہمارے ہمارا دین ایمان جو ہے ہمیں پیارا ہے. اچھا, تو یہ ان جو لیلائیں ہیں ان سے ایک انسان کے چتر, یہ تو بھگوان کا چتر الگ ہے, تو بھگوان کی بھگوان نے اپنی کرپا دکھا الگ بات ہے, پر وہ انسان کیسا تھا, اس کے اندر کیا گن تھا؟ سب سے بڑی چیز وہ بھکت تھا اور اس کے بعد یہ سارے گن تھے. ایسا نہیں میں اور یہ جاننا ضروری اس لیے ہے کہ اگر اس کو بہت ہی سستا لے لے, ہاں بھکت تھا تو سارے اچھے گن ہوں گے ہی ہوں گے, یہی سوچ کے جو ہے ہمیں سب سے زیادہ بھکتوں کے سماج میں دھوکہ ملتا ہے, برا نہیں ماننا, کیونکہ ایسے اندھوں کی طرح چلتے ہیں, ہاں بھکت ہے تو ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی. وہ بھکت ہے نہیں, ابھی جو بھکتوں کے سماج میں ہم لوگ بھکتی کرنے کا پریاس کر رہے ہوتے, تو پریاس کس طرف کرنا ہے؟ ان گنوں کا وکاس کرنے کی طرف پریاس کرنا, تبھی جو ہے ہماری بھکتی جو ہے وہ نکھر کے آئے گی. کس طریقے سے سیوا بھاؤ کا وکاس کریں, کس طریقے سے ونمر ہوں, کس طریقے سے اس کے اندر کسی بھی چیز کا لالچ نہ ہو, آڈمبر نہ ہو, یہ ساری چیز, دوسروں کی سنیں, سپشٹ وادی ہو ونمرتا کے ساتھ, یہ ساری چیزیں سماپ کریں گے یہیں پہ. آج 40-42 تیار ہم نے جو ہے کور کری ہے, دھنیواد. کسی کو پرشن تو پوچھ سکتے ہیں؟ ہاں جی,
وہ شدھ بھکت تھا اور اس نے بھگوان سے پرارتھنا بھی کری تھی کہ آپ دیکھیں, اس کے بعد بھی پھر وہ این سمے میں جب آیا تو اس نے اس اپنے پتر کی باتوں کو کیوں فالو کیا؟ کہ جیسے
مجبوری میں آ کے فالو کیا تو ایسا نہیں ہے, تو یہ دکھاتا ہے کہ شدھ بھکت اچھا ہے, شاستر میں ایسا ایگزامپل ہے, پر اس کا سہارا لینے کے لیے نہیں, پر یہ اپنے طرف سے سمجھنے کے لیے. یہ ایگزامپل ایک بھکت کا اس لیے نہیں ہے کہ ہم بھی ایسے کریں, جب کوئی سامنے سے آئے چناتی تو مکر جائے بولے مجھے یاد نہیں ہے نا. جیسے مان لیجیے کسی نے سیوا دی ہے نا, مان لیجیے کسی نے ہے نا, کوئی مان لیجیے کوئی ٹرین سے جانے والا ہے اور اسٹیشن سے فون کر رہے ہیں, پربھو جی ہے نا, پربھو جی میرا پرساد کہاں ہے؟ پرساد کیڑا پرساد؟ پربھو جی ہمیں پرساد کی بات کرتی. اچھا مجھے ٹھیک سے یاد نہیں سیوا کسی نے بتایا کہ پربھو جی آپ اس وقت یہ چیز لے کے پہنچ جانا, کہتا آپ آئے نہیں پربھو جی, آنا تھا کیا؟ کہتا آپ نے بتایا تھا. اچھا مجھے یاد نہیں. اس لیے نہیں ہے, یہ سمجھنے کے لیے سامنے سے کہ ایسا ہو سکتا ہے تو کیسا لے. تب اس براہمن نے کیا اس وقت کیا اس براہمن نے؟ تم جھوٹے ہو, مکار ہو, دگا باز ہو, ایسا سات براموش ہو, میں نے تمہارے لیے اتنا سیوا کیا, یہ کیا اس نے کیا. سیدھا جو ہے بڑے بڑوں کے پاس گئے اور اس کے بعد سیدھا بھگوان کے پاس گئے, یہ ویلیو. تو اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ ہاں کوئی مجبوری ہوگی, تبھی اس نے وہ ساری باتیں دہرائی, اس نے سمجھ گیا, بچہ نہیں تھا وہ عمر میں چھوٹا ضرور تھا, وہ پاگل نہیں تھا, وہ سمجھ گیا اس نے. پھر وہی بات بھر, میں نے آپ کو پہلے بولا تھا کہ گھر پہ جو ہے آپ کے رضامند نہیں ہوں گے, یہ پرابلمس آئیں گی, آپ نے زبردستی کری میرے سے, اس نے دو بار دہرائی گی یہ بات, اس لیے چاہتے جی میں دیکھ رہا ہوں. اس لیے یہ کہ سینگ دا ادر سائڈ آلسو, ऐसे देखें उस चीज को। जहां तक इस ब्राह्मण का सवाल है जो आप पूछ रहे हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वो शुद्ध वो भक्ता शुद्ध भक्त था, पर वो अगेन द सेम थिंग, उसके अंदर जो है कुछ ना कुछ अनर्थ थे, कमजोर पड़ गया, वो कमजोर पड़ गया। कमजोर कैसे पड़ गया? क्योंकि आसक्ति की वजह से कमजोर पड़ गया। घर वाले सब लोग इतना जोर दे रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, उसकी वजह से कमजोर पड़ गया। ऐसा हो सकता है, मानविक कमजोरियां जो हैं वो भक्ति करने से जो एकदम से चली नहीं जाती, रहती है। तो आप बताते हैं कुंती महारानी के संदर्भ में, शी वॉज हैविंग ह्यूमन फ्रेलिटीज, ह्यूमन फ्रेलिटीज यानी कि एक मनुष्य के अंदर जो है जो कमजोरियां होती हैं वो कई बार जो है आ सकती हैं, ऐसा नहीं है। तो उस वक्त जो है उसको संवेदनशीलता से देखना चाहिए, ऐसा नहीं कि हाँ बस निकल गई सारी भक्ति तरी।
जो वो युवक ब्राह्मण था वो वापस गया क्यों? मतलब अगर वो सिंपल मतलब छोड़ देता, किस भाव से वो वापस भगवान को बुलाने गया?
इसने क्या भगवान के सामने वचन दिया, अरे कमाल है, ऐसा ड्यूटी। वो ये दिखाने के लिए नहीं गया कि क्या कहते देख मेरी कैसी पीछे से मेरी कैसी हुआ, मेरी बैक बहुत स्ट्रांग है, ऐसा नहीं था। क्योंकि भगवान के सामने बात हुई है, वो धर्म का अब वो होगा अवमानना होगी। अगर उसने कन्यादान किया है तो उसने कन्यादान स्वीकार किया, अब आपने वो जिम्मेदारी भगवान के सामने स्वीकार की, अब आप उसका निर्वाह नहीं कर पा रहे तो भगवान के पास ही जाएंगे ना। जैसे हम लोग को सेवा नहीं कर पा रहे, मान लीजिए हम किसके पास जाते हैं? भगवान के पास जाते हैं, हम आपकी सेवा नहीं कर पा रहे। ऐसा थोड़ी बोलते हैं, हाँ अथॉरिटी ने सेवा दी थी तो नहीं करा ली, तो नहीं करा ली, ऐश करो। ऐसा दैट इज नॉट द प्रॉपर एटीट्यूड। फिर तो फिर आप भगोड़े हो। ऐसा थोड़ी कहा उसने ब्राह्मण ने, तू नहीं तो कोई और सही। नहीं, बिकॉज उसने वचन दिया था वहां पर और उसने स्वीकार किया। He did his part, he took that responsibility. वो देना चाहते थे और उन्होंने फाइनली, जब एक बार वो लेना नहीं चाहते थे बात ठीक है, जब तक नहीं लेना चाहते थे तब तक नहीं लेना चाहते थे, पर जब उसने एक बार सहमति भरी, हामी भरी कि हाँ ठीक है, तो तब उसकी जिम्मेदारी है। Now it is absolutely his business. हाँ जी, नहीं पहले करना चाहूंगा, अच्छा इसी मोशन
बात आप विग्रहों के सामने बोलो, तो वो ये भी सोच सकता था कि थोड़ी दिक्कत आएगी, चलो बोल रहा है, अगर नहीं भी हो पाए चलो कोई बात नहीं, तो उन्होंने विग्रह को बीच में क्यों इन्वॉल्व किया?
जी जो उनको ठीक नहीं लग रही थी, भगवान बीच में क्यों इन्वॉल्व किया? तो क्या मतलब है, आपस की बात थी क्या? ये बड़ा अच्छा सवाल पूछ लिया आपने, अक्सर यही होता है तो आपस की बात है, इसको ये भक्तों को बीच में लाने की क्या जरूरत है? ये तो आपस में निपट लेंगे ना अपन, भगवान को बीच में घसीड़ने की जरूरत। तो जो भी जो भक्ति नहीं होती बिल्कुल, मतलब भक्ति में हो और भक्त ना हो वो ऐसी बातें करते, अक्सर यही होता है। आपकी मेरी आपस की प्राइवेट बात थी, आपने गुरु को क्यों बताई? आपने गुरु महाशय क्यों बताई? प्राइवेट बात थी आपस के बीच। कमाल, देयर इज नथिंग प्राइवेट बिटवीन यू एंड योर स्पिरिचुअल मास्टर। ये इंप्लाइड होता है उस वक्त, इंप्लाइड होता है कि हाँ ठीक है, पर है ना वो ज्यादा चुपता है, कि गुरु को पता लग जाए तो ज्यादा चुपता है, भगवान को पता लग जाए तो चुपता नहीं, भगवान बोलते थोड़ी हमसे, इधर चुपता भी नहीं। क्या फर्क पड़ता है, भगवान का पता है नहीं है, हम तो वैसे ही बेशर्म है, वो तो भगवान का पता ही है। और क्या पता बना चीज है।
हाँ जी प्रभु जी, इसको ये पूरा करना था कि प्रभु जी जैसे कि एक्चुअली क्या है, जो यंगर ब्राह्मण है उसको मालूम था कि ये परिवार के प्रेशर में उसको, यानी कि सारी उसकी कमजोरी भी मालूम थी और परिवार का प्रेशर
नहीं, ऐसा नहीं मालूम थी, पर उसको ये सिद्धांत मालूम
थी उसने कि हाँ, ऐसा होगा हाँ, तो उसको एक अंदेशा तो जरूर था, ऐसा तो नहीं उसको अंदेशा नहीं था, उसको अंदेशा भी था कि ये दिक्कत आएगी
जी,
फिर उस केस में ड्यूटीज को इन्वॉल्व करना उनको, यानी उस सेंस में
तभी तो इन्वॉल्व किया कि दिक्कत आएगी, दिक्कत नहीं आएगी तो इन्वॉल्व करने की जरूरत क्या थी? ठीक थी, है तब भी भगवान इन्वॉल्व करते हैं, तब भी जो है भगवान के सामने आकर ही जो है विवाह होता है, अभी नहीं होता, अभी तो भगवान से जितना दूर, क्योंकि सारे पाप कार करने होते हैं, जितनी भी लीचड़ हरकतें जो करनी होती है विवाह के दिन ही करना होता है, जो पूरे पूरी जिंदगी में नहीं करना, एक बार मौका मिला है बस, जो पूरी जिंदगी में नहीं करा होता है ना, जैसे अभी भी थोड़ी बहुत शराफत होती है कि माँ बाप के सामने जो है लड़का जो है गैर लड़की के साथ जो नाचता नहीं है, तो सगाई के टाइम वो भी हो जाता है। यही तो सारी असरतें पूरी करनी होती है लेडीज कीर्तन और इन सबों में, भगवान के भगवान में कीर्तन थोड़ी कराना होता है। जितनी भी लीचड़ हरकतें करनी होती है वो करने के लिए भगवान से जितने दूर हो सके, इसलिए भगवान जितने दूर हो सके पहले उसके बाद होता था, मतलब स्टेज बाय स्टेज गिरता है ना मामला। पहले तो था कि बिल्कुल भगवान से दूर, अभी पहले मतलब पहले तो यहां होता था, फिर यहां से दूर, ठीक है ना, भगवान से दूर करो, फिर इतना कम से कम नवविवाहित दंपति जो है यहां पे आ जाते आशीर्वाद लेना, वो भी नहीं आते जितना दूर रहो। तो ये पर ये जो उनका जो सिस्टम था वो ये था कि भगवान को इन्वॉल्व करके चलना, चाहे फॉर है चाहे अगेंस्ट है दोनों मामलों में। ऐसा नहीं है जैसे हिंदी मूवीज में दिखाते हैं ना, है ना, जब घर वाले माने ना तब जो है लड़की भगा लो तो भगवान के सामने आके शादी करेगी मम्मी जी, अरे बड़ा अच्छा है, और जब घर वाले मान जाए तब पार्क रॉयल में शादी करेंगे। जब भगवान मान जाए, घर वाले मान जाए तो पार्क रॉयल में शादी करा लो, और भगवान भगवान और घर वाले ना माने तो तू है ना मेरा बाप नहीं मान रहा तो मैं अपने बाप के पास जाकर शादी करूंगा। ये कल्चर नहीं था उन, ऐसा होता है हमारे यहाँ पे एक आध का केसेस आए हुए, मैं पर्सनली टकरे मेरे से दो वैसे यहाँ पे मंडराते फिर रहे हैं, अचानक क्या हुआ आपके यहाँ पे शादी कराते हैं? तो मैंने कहा नहीं यहाँ नहीं कराते, बड़े मंदिर में कराते हैं। अच्छा पंडित मिल जाएगा? तो तभी भी समझ नहीं आई मेरे को, बाद में समझ वो वाला केस है। अब भगवान आ जाए तेरे को, अब भगवान आ जाए तेरे को, जब घर वालों ने निकाल दिया वहां से अदर भगवान आ रहे निकल यहां से। तो इसीलिए हाँ नहीं ऐसा नहीं करते हम, बट ये नहीं बस सीखता। हाँ जी पीछे, हाँ जी जल्दी करिए बोलिए, बहुत बहुत कम।
प्रभु जी एक चीज पूछनी थी, जैसे आपने एक्सप्लेन करा था कि एक एग्जाम्पल दिया था कि इल्जाम जैसे लगता है तो मैं आश्रय लेना चाहिए भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र से, तो उसी रिलेटेड एक डाउट था कि मतलब जब हम डीलिंग्स कर रहे हैं डिवोटीज के साथ सीनियर्स के साथ, तो स्पेशली सीनियर्स के साथ, तो अगर कुछ चीज ऐसी नहीं है मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो एक्सप्लेनेशन अगर दे रहे हैं तो वो एक्सप्लेनेशन या एरोगेंट बिहेवियर तो शो नहीं होता इफ वी आर एक्सप्लेनिंग सम पॉइंट।
डिपेंड करता है एक्सप्लेनेशन कैसे दिया जा रहा है ना, एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है कि टू स्टेट व्हाट इट इज, अच्छा स्टेटिंग द फैक्ट्स, जैसे प्रभुपाद बताते हैं भगवद्गीता के बार बार में स्टेटिंग द फैक्ट्स, अच्छा नॉट टू प्रूव आई एम राइट। जैसे आपको किसी ने आपके किसी ने इल्जाम लगाया तो आपने उसको सच बता दिया, इसलिए नहीं बता जताने के लिए कि मैं सच्चा आदमी हूं और तू झूठा है। अगर आप ये कह रहे हो कि देखो आपने आपको बोला कि आप झूठे हो तो आपने बोला नहीं मैंने ऐसा नहीं किया तो मैंने ऐसा किया था, इसका मतलब इंप्लाइड किया आप झूठे हो, नहीं ये चीज ऐसी थी, अब आप फैसला करिए क्या था। अच्छा तो ये तरीका होता है, अक्सर क्या होता है हमारे अंदर टेंडेंसी क्या होती है रिटेलिएट करने की होती है, नहले पे दहला मारो उसने ऐसा बोला तो हाँ तो आपने भी तो ऐसा किया, खबर ऐसा होता कि आपने ऐसा क्यों किया तो पहले आपने भी ऐसा किया था। मैंने उसका वो नहीं पूछा कि मैंने क्या किया था, मैं पूछ रहा हूं आपने ऐसा किया कि पहले ये बताओ ये क्यों किया, फिर आप एक इल्जाम लगा सकते हो पलट के आपने ऐसा क्यों किया। इल्जाम का जवाब इल्जाम नहीं होता, तो हमारा क्लैरिफिकेशन जो है कई बार ऐसा होता है तो देखना पड़ेगा कैसे क्लैरिफाई कर रहे हैं, और चाहे सीनियर जूनियर अंदर बाहर भक्त हो चाहे ना हो स्टार्टिंग हमारा यहीं से होना चाहिए प्रैक्टिस। तो ये ऐसा नहीं पहले दिन हो जाएगा, पहली बार कई बार गलतियां करेंगे, पहले ओहो मैं भूल गया था कृष्ण महामंत्र बोलना, ओहो मैंने ओह अच्छा ऐसा तीसरे शायद, तो ग्रेजुअली ग्रेजुअली कुछ महीनों में जो है ग्रेजुअली विल गेट द प्रैक्टिस, क्योंकि इल्जाम तो हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई लगाता ही रहता है ना, मैंने फोन किया तो तूने फोन क्यों नहीं उठाया, जानबूझ के नहीं उठाया इमीडिएटली है ना, तूने भी तो नहीं उठाया पहले हरे कृष्ण महामंत्र स्टेट द फैक्ट्स लाइक गोपाल कृष्ण उस समय उसको मैंने देखा एक बहुत ही मतलब एक संजीदा केस डील करते हुए देखा था, तो महाराज पे जो है काफी इल्जाम लगाए थे एक डिपोटी ने आके इस काउंटर महाराज, मैं वहां पे था उसको, तो महाराज ने उसको पहला लाइन बोला आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू बिकॉज दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ यू, सीधा आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ यू, मैं बोला मैं आपको डरता नहीं हूं पर मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि बताना मेरा फर्ज है, بس نہ چل. اب آپ جو مرضی سمجھو مجھے اس کے بعد ہیروگینس نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے, یہ بس سماپت کریں گے. سب کو بہت بہت دھنیہ واد. گرنتھراشی چیتن سدھانت کی, جگت گرو شیل پربھات کی, اپستھت بھکت ورند کی, تائی گوشت ناتھ پریمانند. ہری ہری بول.